इस संबंध में एक अंग्रेज अधिकारी W.S. ब्लंट ने लिखा है, भारत के लिए रूस एक मित्र साबित हो सकता है जो उसे हमारी घातक आर्थिक प्रणाली से छुटकारा दिला दे। स्वतंत्रता, अच्छी अर्थव्यवस्था तथा भौतिक प्रगति का मित्र अर्थात रूस पूर्ण स्वशासन के बदले एक व्यापारिक संधि कर ले। डफरिन रूस से भयभीत भारतीय सीमाओं के प्रति तो भयभीत था ही, परंतु उसने आगे बढ़ने पर भारतीय जनमत पर होने वाले प्रभाव से ज्यादा भयभीत था। इसलिए डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसलिए की कि एक ऐसा मंच मिल सके जहां से उदारवादी भारतीय नेता रूस विरोधी तथा अंग्रेज समर्थक प्रचार कर सके। यह कांग्रेस के प्रारंभिक नीतियों में भी झलकता है। प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष W.C. बनर्जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, ग्रेट ब्रिटेन ने भारत के हित के लिए बहुत कुछ किया है तथा इस राज्य के शांतिपूर्ण चलते रहने से ही भारत की शांति तथा समृद्धि संभव है। इसी प्रकार की अवधारणा सर विलियम वेडरबर्न, जिन्होंने 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ने कहा था। रूसी सेनापति भी यह आशा थे कि उसके आक्रमण करते समय ही भारतीय लोग अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देंगे। इस प्रकार अंग्रेजी साम्राज्यवादियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना रूस विरोधी मंच के रूप में की। कांग्रेस की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण इस रूप में होना चाहिए कि ह्यूम ने अधिक से अधिक इसकी स्थापना में सहानुभूतिपूर्ण भूमिका निभाई। जिन देशवासियों ने अखिल भारतीय राष्ट्र की स्थापना के लिए सक्रिय ढंग से काम किया उन सामाजिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे जो अंग्रेजों के हित के लिए भारत का शोषण करने का तेजी से विरोध कर रहे थे। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस, जैसा कि इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी ने कहा, भारत की राष्ट्रीय सभा के रूप में उदित हुई जिसमें एक स्वदेशी संसद की जड़ें छिपी हुई थी और इससे में उन लोगों ने भूमिका निभाई जो वफादार भारतीय राष्ट्रवादियों की संस्था को विद्रोह उपद्रव के पालन गृह में बदलने पर बिल्कुल तैयार नहीं है। लाला लाजपत राय ने 1913 में यह स्पष्ट किया कि अखिल भारतीय स्तर के इस संगठन की स्थापना बिना ब्रिटिश शासनाधिकारियों के सहानुभूति के संभव नहीं था। यदि ह्यूम ने कांग्रेस का एक सुरक्षा नलिका के रूप में इस्तेमाल किया तो आरंभिक काल के कांग्रेसी नेताओं ने इसे लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की आशा थी। आरंभिक दो दशकों में अखिल भारतीय कांग्रेस के मांगों तथा कार्यक्रमों का वर्णन करें। अपने आरंभिक चरण में कांग्रेस का कार्यक्रम बहुत सीमित था। कांग्रेस के प्रारंभिक सदस्य जिनमें अधिक अंग्रेजी उच्च शिक्षा प्राप्त व्यावसायिक व्यक्ति जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियरिंग, पत्रकारिता तथा साहित्य से जुड़े व्यक्ति ब्रिटिश राजभक्त ही बने रहे। वे सारे नेता उदारवादी था, नर्मदरिया नीतियों में विश्वास करते थे। अतः 1885 से लेकर 1905 के आरंभिक दो दशकों को कांग्रेस का उदारवादी चरण कहा जाता है। इन सभी नेताओं का सामाजिक उद्गम, उनका प्रशिक्षण, इनकी कमजोरियां, सभी ने इन्हें प्रार्थना, याचना तथा प्रतिवाद, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट प्रकट करने पर बाध्य किया। शिक्षित मध्यम वर्ग को उपाधियों तथा सरकारी सेवाओं आदि से बहुत अनुराग था। अतः उनकी नीति ब्रिटिश राज से सहयोग करने की थी, न कि विरोध करने की। अतः कांग्रेस ने प्रारंभिक नीतियां, मांगों तथा प्रस्तावों पर नर्मदलीय नेताओं का प्रभाव स्पष्ट झलकता था। उनकी मांगे हल्के फुल्के संवैधानिक सुधारों, आर्थिक सहायता, प्रशासकीय पुनर्गठन तथा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा तक सीमित थी। कांग्रेस की प्रारंभिक मांगे तथा कार्यक्रम निम्न थे। पहला, प्रांतीय काउंसिलों का गठन किया जाए तथा इसमें भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा, भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल की परिषदों में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की जाए। तीसरा, इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा का इंग्लैंड के साथ ही साथ भारत में भी आयोजन किया जाए। चौथा, आर्म्स एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, रेगुलेशन तथा सेडिशन एक्ट समाप्त किया जाए। पांचवा, सेना में भारतीय कमीशन ऑफिसर, सेकेंड लेफ्टिनेंट तथा उसके ऊपर के पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हो। छठा, सैनिक व्यय में कमी हो। सातवां, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक किया जाए। आठवां, भारत के सभी भागों में भू राजस्व की नीतियों में सुधार किया जाए। नौवां, बेगार लेना बंद किया जाए तथा निर्धन भारतीयों की स्थिति में सुधार के लिए अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। कांग्रेस ने सरकार द्वारा उठाए गए सभी महत्वपूर्ण कदमों तथा नीतियों पर उसकी अपनी राय दी तथा उसकी गलत नीतियों की आलोचना की तथा उसका विरोध किया। इस मांगों को हर साल दोहराया गया, परंतु सरकार ने इस पर शायद ही कभी ध्यान दिया हो। पहले 20 वर्षों 1885-1905 में कांग्रेस के कार्यक्रमों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। उनकी मुख्य मांगें लगभग वही बनी रही जो उसके पहले 3 या 4 अधिवेशनों में पेश की गई थी।